HD Smartcast.
You are listening to an HD Smartcast original.
Hi and welcome to Man Ki ABC. यहाँ मैं अंशुमा आपसे आपके मन के बारे में बातें करने आई हूँ. मैं एक साइकोथेरेपिस्ट हूँ और एक क्रिएटिव आर्ट्स थेरेपिस्ट भी, और अपनी कंपनी कलर ऑफ ग्रे सेल्स के जरिए मेंटल हेल्थ की एडवोकेसी करती रहती हूँ. बस उसी सिलसिले में सोचा आपसे भी बातें कर लूँ, और हर हफ्ते ABCD करते हुए एक एक करके आपके मन के थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस हम डिस्कस कर लेंगे. इस पॉडकास्ट को जरा आराम से सुनिए, क्योंकि कभी हम मेडिटेशन करेंगे, कभी कोई कॉन्सेप्ट समझेंगे, तो कभी किसी और के साथ बातें करेंगे, बट रखेंगे माहौल सिंपल एंड रिलैक्स्ड. क्या है ना, मन की ABC समझ लो तो लाइफ थोड़ी और इजी हो जाएगी.
क्या आपके साथ भी होता है, बैठे बैठे जैसे कहीं गुम जाते हो, प्रेजेंट की जगह पास्ट या फिर फ्यूचर में चले जाते हो, एक इमोशन सा जैसे आ जाता है जिसमें आप खो जाते हो, इस सोच के पीछे पीछे बिल्कुल आपा खो बैठते हो और समझ ही नहीं आता कि कहाँ चले गए. इसी इमोशन के बारे में आज बात करेंगे, वाइस से यर्निंग. और आज इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हैं एक और मेरी बहुत एबल कॉलीग जो कि एक साइकोथेरेपिस्ट हैं. उनका नाम है याशिका. शी इज अ साइकोएनालिटिक फेलो एट द साइकोएनालिटिक सेंटर ऑफ फिलाडेल्फिया, अ डिस्टिंग्विश्ड एकेडमिक ऑनर ग्रांटेड इन रिकॉग्निशन ऑफ हर इंटरेस्ट एंड एक्यूमेन इन साइकोएनालिटिक थॉट. इसके अलावा उनके पास एक MSc है साइकोएनालिटिक डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में, जो कि एना फ्रॉयड सेंटर यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से उन्होंने किया है, और एक MA भी है अप्लाइड साइकोलॉजी में जामिया मिलिया इस्लामिया से. सो वेलकम टू द पॉडकास्ट, वेलकम टू मन की ABC याशिका. और हम आपसे समझना चाहेंगे आज कि आपको अपनी जिंदगी में और अपनी प्रैक्टिस में वाई से यर्निंग का क्या एहसास है और क्या समझ है.
हाय अंशुमा, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द पॉडकास्ट. आई थिंक मेरी प्रैक्टिस में और मेरी लाइफ में मैंने यर्निंग के बारे में क्या समझा है और क्या एक्सपीरियंस किया है, इसका जवाब आई वुड लाइक टू आंसर इट इन टू पॉइंट्स. पहला तो आई विल टॉक अबाउट माई ओन सेल्फ इन द सेंस कि मैंने कैसे एक्सपीरियंस किया यर्निंग. If you go by the definition of the word yearning, it means, it sort of refers to like intense longing for something. Hum yearn kar rahe hain for a person, for a place to be in, ya koi cheez, ya koi situation, kuch bhi. I think the earliest I remember yearning for something was yearning to just grow up. I just wanted to grow up as a child. Mujhe bas jaldi se bada hona tha, because somewhere in my mind I thought ki agar bade ho jaungi to bahut kuch kar sakti hu apni life ke saath. And so I think I used to yearn to just adult. और अब अडल्ट बन के आई एम कॉन्स्टेंटली यर्निंग टू जस्ट गो बैक टू बीइंग अ चाइल्ड. एंड आई हैव अ वेरी सिमिलर एक्सपीरियंस इन प्रैक्टिस एज वेल व्हेन आई वर्क विद पीपल. फॉर इंस्टेंस, ऑब्वियसली इन दिस वे एज वेल, वेर आई वेरी ऑफन एनकाउंटर पीपल हु आर स्ट्रगलिंग टू मेक पीस विद देयर अर्ली एक्सपीरियंसेस, और स्ट्रगलिंग टू काइंड ऑफ यू नो मेक सेंस ऑफ द आइडिया और द रियालिटी दैट द आइडियलाइज्ड चाइल्डहुड दैट परहैप्स दे यर्नड फॉर और दे वॉन्टेड ग्रोइंग अप, वो नहीं एग्जिस्ट करता, वो नहीं हो सकता. I think, yeah, this is one way in which I've experienced yearning in my practice. What about you? What do you think about this?
हाँ, yearning का मतलब मेरे लिए भी वही है कि किसी चीज की इतनी चाह कि बस आप उसमें अपना present moment से, जैसे आप body से जैसे वहां चले गए, किसी चीज की आपको इतनी इच्छा है, अब वो जैसे आप बोल रहे हो कि fantasy में भी exist कर सकता है, something that never happened and I can yearn for that. या वो रियलिटी में एग्जिस्ट कर सकता है कि एक दिन ऐसा आएगा कि मैं वो कर बैठूंगी या कर बैठूंगा एंड देन आई विल बी सक्सेसफुल. तो वो एक वो जैसे बोलते हैं फ्यूचर थॉट, या फिर अपने पास्ट की ऐसी कोई फैंटेसी जो पूरी नहीं हो पाई. एंड आई फाइंड दैट वेरी इंटरेस्टिंग इन माई प्रैक्टिस, स्पेशली क्योंकि मैं आर्ट थेरेपी के साथ काम करती हूँ, आर्ट थेरेपीज के साथ, जैसे ड्रामा थेरेपी, मूवमेंट थेरेपी. तो इसमें मुझे बहुत ये इंटरेस्टिंग लगता है कि हम एक्चुअली इस यर्निंग को एक्सप्लोर कर सकते हैं. हम कहानियों के जरिए पीछे भी जा सकते हैं, आगे भी जा सकते हैं, और कभी कभार द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू डू इज स्टे इन द प्रेजेंट. एक्चुअली कि बिना यर्निंग के रहना ज्यादा मुश्किल लगता है. लाइक व्हाट डू यू फील अबाउट व्हेन पीपल आर नॉट एबल टू स्टे इन देयर प्रेजेंट बॉडीज, प्रेजेंट मोमेंट? ये यर्निंग का मतलब क्या है हमारी साइकोलॉजिकल लाइफ में?
आई थिंक व्हेन समवन इज नॉट एबल टू स्टे इन द हियर एंड नाउ इन देयर प्रेजेंट बॉडी, I mean, there could be many reasons for it. More often than not, I see this particular experience of yearning or just kind of wanting to flee from where you are at right now. I mean, I think it's highly pathologized as well in the world of mental health or psychology, that something must be really wrong with you, that you can't stay in the present. यहाँ क्यों नहीं रह सकते हो, ठहर जाओ थोड़ा. आई थिंक इसके लिए वन वे टू लुक एट दिस वुड बी, आई वाज थिंकिंग अबाउट अ पेपर रिटन बाय नन अदर दैन सलमान अख्तर. On the paper's title, Third Individuation, and he's talking about the experience that people have jab apna desh chhod ke kisi aur desh mein jaate hain, and what that experience is all about, and what does that mean for them. And usme he talks about two things. He talks about the someday fantasy and the if only fantasy. Ek din aur agar aisa hota to, ye do fantasies ke bare mein wo baat karte hain. And I think I would see it from that lens. Hum ek aisi jagah pahunch jaate hain, we find ourselves in this almost liminal space, this in between of अगर मेरे साथ ऐसा होता तो मैं यहाँ होती, और अगर ये ना होता तो मैं यहाँ होती. एंड आई थिंक दैट्स वेयर वी फाइंड आवरसेल्व्स. आई मीन कल ही मैं अपनी मॉम से बात कर रही थी रात को, अपनी पर नानी के बारे में. वो पार्टीशन में लाहौर से इंडिया आई थी, तो उनके बारे में बात कर रहे थे. मैं उनसे पूछ रही थी कि मुझे और बताओ क्या था, कैसे हुआ था और ये सब. तो उन्होंने मुझे बोला कि जब वो यहाँ आई, जब वो और उनका पूरा परिवार, मतलब मेरी नानी, उनके भाई, उनके बहन सब यहाँ आ रहे थे, इंडिया आ रहे थे, तो उनके माइंड में ये था कि हम अभी बस कुछ दिनों बाद वापस लौट आएंगे लाहौर. They did not think कि कभी वापस नहीं जा पाएंगे. तो that was very shocking. यहाँ आ गए, but I think वो चीज कभी sink in ही नहीं करी मेरी परनानी में कि वो कभी वापस नहीं जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे. So I think she was always living in that liminal space. अगर partition ना होता तो, और अगर मैं वापस चली जाऊं तो ऐसा होता. तो I think she was always living in that yearning in her life. तो वो कभी, जैसे कहते हैं ना कि वो कभी यहाँ थी ही नहीं.
मुझे ये लगता है इसका कोई बायोलॉजिकल फंक्शन भी होगा. हर इमोशन जब हमारी बॉडी में बनता है और हर स्टेट जो हम अब एक्सपीरियंस करते हैं, एक टाइम पे दैट वाज अ फंक्शन फॉर दैट स्टेट. एंड आई कीप थिंकिंग अबाउट इसका क्या फंक्शन होगा. और जब आपने ये कहानी बताई तो मुझे ये समझ आया कि जैसे इस स्टेट का फंक्शन कम्स फ्रॉम बेसिकली बींग एबल टू लुक एट ऑल आवर चॉइसेस. हम बैठ कर अगर अपनी सारी चॉइसेस देख सके तभी हम किसी चीज के बारे में सही डिसीजन बना पाते हैं. तो एक्चुअल फंक्शन मे बी जस्ट टू लुक एट एवरी सिनेरियो इन अ फैंटेसी वेरी फुल्ली, जैसे हम वहां जी रहे हो. लेकिन उस सिनेरियो से जब हम अटैच हो जाते हैं इस तरह से कि हम अपने आपे में इस समय नहीं हैं और हम उस सिनेरियो में गुम जाते हैं या फिर कभी वापस ना आ पाना, स्टक हो जाना उस सिनेरियो में, तो शायद आई थिंक जो आप बोल रहे थे कि साइकोलॉजी उस चीज को पैथोलोजाइज कर देती है, क्योंकि फिर आप आज के यहाँ के फंक्शंस जो हैं आपके, जो भी हमने ये समझा है अभी तक इस पॉडकास्ट में भी, कि पैथोलॉजी तभी आती है जब हमारा फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है. तो जब वो यर्निंग हमारी फंक्शनैलिटी को इम्पैक्ट करने लग जाए तो आई थिंक इट इज समवॉट समथिंग टू लुक एट, कि हम इतने स्टक हो गए हैं कि हमने कभी, आपकी बॉडी, आपका माइंड आपको डायरेक्शन दे रहा है कि ये आप इस समय यहाँ प्रेजेंट मोमेंट में नहीं है. व्हाट यू थिंक अबाउट दैट?
जितना मतलब मुझे पता है उनके बारे में, मेरी परनानी के बारे में, she was fine is what I remember. I mean from whatever I've been told. But I think she never got over it. She never got over the fact that she had to move overnight and she had to leave overnight. And I think जो आपने बोला about functionality वो एक काफी valid point. I understand that. But I'm also thinking कि इसीलिए कहानियाँ बहुत जरूरी हैं, कि किसी भी इंसान के लिए, हर किसी के लिए level of functionality अलग होता है, किसी के लिए मतलब of functionality अलग होता है. एक functionality का जो एक expectation है, which has been imposed on us by the society, it's one thing कि कुछ चीजें हमें करनी पड़ती हैं to survive in this world. But कुछ हमारी अपने आप से भी expectations होती हैं कि मुझे हाँ ये करना है, मुझे इतना functional होना है life. And I think उसके लिए कहानी समझना बहुत जरूरी है. What is the story behind this yearning? What is the story behind this difficulty in staying in the present or staying in your body?
No, I think you're putting that very well, but I also feel like wahi to psychotherapy hoti hai ek tarike se. Psychotherapy is trying to find out the story behind the yearning, whether that yearning is for health, ki aage jaake main theek ho jaun, ya wo yearning us fantasy ki hai ki mera past theek nahi tha aur isiliye main aaj present mein nahi hu. जो भी एक जो स्टोरी हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं उसी का नाम से हम साइकोथेरेपी बोल देते हैं. सो इन सम वे ऑल ऑफ यर्निंग, जब हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं जो परेशान होते हैं, वो अपनी यर्निंग से ही तो परेशान होते हैं कि हम शायद पिछला नहीं छोड़ पा रहे या आगे में ही जी रहे हैं. एंड इन दैट वे आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑल्सो कि आप ट्रैवल कर सकें अपनी यर्निंग के थ्रू, बट उस ट्रैवल में आप गाड़ी चला रहे हैं. You are the one who is able to direct it in some way. क्योंकि वो जब वो direction less हो जाता है या वो चलता चला जाता है तो बहुत परेशानी भी हो सकती है. But I agree with you, ऐसा नहीं है कि हर चीज pathology है. Yearning का अपना एक बहुत अच्छा function है. For example, anybody who wants to set any goal, anything, it's all because हमारे पास एक future thought है. हमारे पास वो function है कि हम आगे as human beings with consciousness, more than any other animal on this planet, we are able to think about the future, we are able to plan about the future, we are able to yearn for it. वो एक जज्बा आ जाता है तभी तो हम वो चीज कर बैठते हैं जो शायद हम सोच भी ना पाए कि हम कर पाएंगे. सो यर्निंग ऑल्सो हैज दैट फंक्शन.
आई एग्री विद दैट. एंड समहाउ व्हेन आई वाज लिसनिंग टू राइट नाउ आई वाज ऑल्सो थिंकिंग कि यर्निंग और नॉस्टैल्जिया में क्या फर्क है. बिकॉज व्हेन आई वाज थिंकिंग अबाउट व्हाई फॉर यर्निंग आई वाज थिंकिंग नॉस्टैल्जिया और यर्निंग्स बड़े सिमिलर से साउंड करते हैं. पर फिर मुझे लगा कि एक फर्क शायद ये हो सकता है नॉस्टैल्जिया और यर्निंग के बीच में कि यर्निंग में एक फॉरवर्ड मूवमेंट भी पॉसिबल है. बट आई फील कि नॉस्टैल्जिया में फॉरवर्ड मूवमेंट पॉसिबल शायद नहीं होती है क्योंकि नॉस्टैल्जिया इज अबाउट परहैप्स दोज थिंग्स व्हिच हैव ऑलरेडी अकर्ड और दोज एक्सपीरियंसेस वी ऑलरेडी हैड और एक वो डिजायर कि हम वापस वहां चले जाएं या वापस उस ऑब्जेक्ट को हासिल कर लें उस एक्सपीरियंस को रिलिव कर लें.
आई थिंक आई फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग कि यू आर ब्रिंगिंग इट टू द पास्ट. और क्योंकि आज आप अपने परनानी की कहानी बता रहे थे और आप यर्निंग को एक पास्ट स्टेट से भी जोड़ रहे हो, आई जस्ट वांट टू टॉक अ लिटिल बिट अबाउट इनहेरिटेड यर्निंग. कि कुछ चीजें और कुछ सपने तो हमारे होते हैं, हमारी लाइफ से पनपते हैं, हमारे पास्ट से पनपते हैं, हमारे फ्यूचर से पनपते हैं. पर कुछ चीजें ऐसे होती हैं जो हमारी नहीं होती लेकिन हम दूसरों के लिए करना चाहते हैं. और ये शायद हमारे कल्चर में बहुत रेलिवेंट है कि हमारे दादा दादी के सपने हम पूरा करना चाहते हैं या हमारे माँ बाप के सपने हम पूरा करना चाहते हैं. हमें वो यर्निंग हो जाती है जो हमारी फैमिली की यर्निंग होती है और जो हमारी फैमिली हमारे लिए ये भी यर्न करती है कि हम सेटल हो जाएं, हमारी शादी हो जाए, हमारा बच्चा हो जाए. ये यर्निंग्स जो होती हैं जो हम शायद रुकते भी नहीं, ठहरते भी नहीं दो मिनट सोचने के लिए कि क्या ये मुझे भी चाहिए. हम ये एक्सपेक्टेशन में जी रहे हैं जैसे ये इनहेरिटेड यर्निंग हमको पूरी करनी है. तो उसकी वजह से भी जो प्रेशर बन सकता है किसी एक इंसान की साइकी पे जो शायद थोड़ा अलग हो, कुछ और चाहता हो, और फिर भी इस इनहेरिटेड यर्निंग की वजह से क्योंकि हम किसी और के सपने पूरे करने में अपनी पूरी जिंदगी लगाने के लिए तैयार हैं, वो कहीं ना कहीं थोड़ा दबता चला जाता है. एंड व्हाट आई एम रियली सीइंग इन माय प्रैक्टिस आर पीपल जो बहुत बाद में इस चीज को रियलाइज करते हैं कि वो सपने उनके थे ही नहीं. एंड देन दे सफर, दे थिंक अबाउट हाउ इफ दे कुड हैव चोजन दे वुड हैव चोजन डिफरेंटली. एंड दिस बिगिंस फ्रॉम चूजिंग इंजीनियरिंग या डॉक्टरी, चूजिंग साइंस या कॉमर्स, वहां से लेकर और बाकी सारी लाइफ जो है वो जो एक सेट पैटर्न पे चलती रहती है, वो क्या सच में हमारी यर्निंग है या वो हमने कहीं ना कहीं से इनहेरिट करी है. सो व्हाट यू थिंक अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ यर्निंग इन आवर कल्चर एंड फैमिली?
आई थिंक ये बहुत ही अच्छा सवाल है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है एट दिस पॉइंट गिवन जस्ट द वर्ल्ड दैट वी लिव इन टुडे. बिकॉज आई थिंक इंडियन कॉन्टेक्स्ट के बारे में अगर हम बात करें तो अपने सपने अपने हैं या किसी और के हैं, योर राइट, बहुत बाद में पता चलता है. और शायद ये भी पता चलता है कभी कभी कि शायद अपने सपने कभी थे ही नहीं क्योंकि कभी मौका ही नहीं मिला अपने खुद के सपने देखने का. एंड दिस इज डेफिनेटली अ वेरी स्ट्रांग थीम इन माय वर्क एज वेल दैट आई एक्सपीरियंस. बिकॉज कहीं ना कहीं एक एक्सटेंशन बन जाते हैं हम अपनी फैमिलीज के, अपने पेरेंट्स के, अपने और मतलब पीपल वी नो इन आवर लाइफ. और कहीं ना कहीं जो हमें चाहिए हमें नहीं चाहिए वो हम पता ही नहीं लगा पाते हैं. So I feel in that there is, I mean, inherited yearning. Yes, I'm thinking about inherited yearning in the sense ki haan, jaise agar main bahar padhne gayi, main UK padhne gayi, to wo mere liye ek tarike se shayad inherited yearning hi thi. I think humne kiski yearning inherit kari ya nahi kari, apni hamari khud ki yearning hai. Iske bare mein pata lagane ke liye somewhere self work is the answer. I know self work is a privilege as well, but kahin na kahin ruk kar sochna padta hai. Kaise ruke? Kaun rokega? Khud rukenge? इस सवाल का जवाब सिर्फ यू कैन गिव इन माय ओपिनियन.
आई थिंक दैट्स व्हाट इट इज, राइट? कि वो रिफ्लेक्शन किस चीज के लिए कहाँ कब आता है वो तो आता रहता है. मुझे लगता है कि हम जब भी किसी चीज के साथ, किसी इंसान के साथ इंटरेक्ट करते हैं, हमें अपना एक प्रतिबिंब, हमें अपना एक रिफ्लेक्शन मिलता रहता है. लेकिन उस रिफ्लेक्शन को हम कितना ध्यान दें, उस चीज के साथ हम कितना ठहर पाते हैं, कितना उसे ठहराव के साथ समझ पाते हैं, उस चीज के लिए अपनी लाइफ में जगह बना पाते हैं या नहीं बना पाते, दैट्स व्हाट्स इम्पोर्टेंट. सो इवन इफ आपको ऐसा लग रहा है कि आप अपनी जिंदगी में जैसे चले ही जा रहे हो, बहुत फास्ट पेस दुनिया आजकल की, और आप चलते चले जा रहे हो और आपको जो बोला जा रहा है और जैसी यर्निंग्स हैं आपकी, आप उनको ध्यान नहीं दे रहे हो, आप बस अपने हिसाब से टिक मार्क करते जा रहे हो कि लोगों से ये एक्सपेक्टेशंस हैं, लोगों की ये यर्निंग्स हैं, तो मैं इनको पूरा कर जाती हूँ, तो वहां आई थिंक एक ठहराव की, एक पॉज की जरूरत है. आई डू बिलीव इन द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ वर्क. मैं हर बार की तरह आज भी बोलूंगी कि अगर आपको किसी यर्निंग में स्टकनेस है, पास्ट में या प्रेजेंट में या फ्यूचर में, अगर आपको लगता है कि आप अपने किसी सिचुएशन में उलझे चले जा रहे हैं या किसी और की यर्निंग्स की वजह से जी रहे हैं, आई वुड रियली रियली हाईली रिकमेंड कि प्लीज थोड़ा टाइम अपने निकालिए एंड प्लीज गो अहेड एंड डू सम सेल्फ वर्क, व्हाटएवर दैट मींस फॉर यू. और अगर खुद से नहीं हो पा रहा है तो इट्स ऑलवेज बेटर टू डू इट इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर पर्सन एंड दैट्स व्हाट थेरेपी इज फॉर. ओके, तो आज के टॉपिक हम यही खत्म करते हैं. और अगर कोई आखिरी पॉइंट हो याशिका जो आपको बनाना हो तो व्हाट वुड यू लाइक टू ऐड?
आई थिंक द लास्ट थिंग दैट आई वुड वांट टू से इज कि चाहे वो यर्निंग हो, चाहे वो लर्निंग हो या अनलर्निंग हो या कुछ भी हो, एनीथिंग इट इज, आई थिंक इट्स नॉट ever a linear process. There is always going to be a back and forth. You will always travel 10 steps forward, 20 steps back. It's always going to be like that. It's a very painful process. And I think it's important to be kind to oneself in that when you're undergoing that process, whatever that means for you. Like you said, it can be a lifelong process for some people. That's all I'd like to say. And thank you so much for having me. बहुत मजा आया बात करके और बहुत कुछ लेके जा रही हूँ वापस सोचने के लिए. So thank you for this wonderful experience.
थैंक यू फॉर बींग हियर. और इसी तरह हम और भी चीज़ों को और अनपैक करते रहेंगे, कभी किसी के साथ, कभी किसी मेडिटेशन के साथ, कभी सिर्फ आप और मैं. और अगली बार जब हम मिलेंगे तो बात करते हैं जेड से जेस्ट के बारे में फॉर आवर सीजन फिनाले.
तो ये था आज का लेटर और अगले हफ्ते एक नए लेटर के साथ मैं फिर आऊंगी. मैं हूँ अंशमा, आपकी होस्ट. एंड इफ यू वॉन्ट टू रीच आउट टू मी, यू कैन फाइंड मी ऑन इंस्टाग्राम at color of gray cells, that is @colour of grey cells. Aur iske alawa, to get more updates on Monkey ABC, you can follow @HTSmartcast on Facebook, Instagram, Twitter, Clubhouse, YouTube, ya LinkedIn. And to listen to more podcasts, log on to htsmartcast.com aur suno naye nazariye se.
This was an HT Smartcast original.
HT Smartcast.